नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं रमनदीप सिंह सोढी। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, फॉर्मर मिनिस्टर, एमपी और एक शानदार राइटर शशि थरूर जी, जिनके लेक्चर, जिनकी स्पीच दुनिया भर में सुनी जाती है। 25 के करीब अभी तक किताबें लिख चुके हैं और जब शशि थरूर जी का नाम आता है तो इनकी इंग्लिश, इनकी वोकैबुलरी को लेकर सभी लोग बड़ी तारीफ करते हैं। इस वक्त उनके साथ हम देश की और पर्टिकुलर पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम उनके साथ चंडीगढ़ में बैठे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका।
नमस्कार, अच्छा लगा आपसे मिलकर।
थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो शुरू करूंगा कि देश में इस वक्त पॉलिटिकल हालात, पॉलिटिकल वेदर आपको कैसा लग रहा है?
देखिए, मेरे ख्याल में सरकार का बदलने का वक्त आ गया है और जून 4 को नई सरकार बनेगी।
और बीजेपी के नारे को कैसे देखते हैं कि इस बार 400 के पार?
देखिए, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे हैं। ये जो 400 जब उन्होंने कहा उस वक्त ही नामुमकिन था, अब तो 300 पार भी नामुमकिन है। और हम लोग सोच रहे हैं कि उनको 200 पार करने में बहुत अच्छी बात होगी अगर वो कर सके, क्योंकि जो देश में देख रहे हैं लोग बहुत असंतुष्ट हैं। भाजपा 10 साल में उनके लिए क्या किए हैं? वो लोग शायद सोचे होंगे कि राम मंदिर को ये लेके और दूसरे हिंदू हृदय सम्राट बातें करके वो लोग ये आइडेंटिटी के नाम में वोट मांगेंगे। लेकिन सही है कि ये नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग को मालूम है कि अंत में मंदिर तो अच्छी बात होगी, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या है? लोगों, जनता की भलाई। और आम आदमी की भलाई बिल्कुल नहीं हुई 10 साल में। बेरोजगारी बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारे आंकड़े जो 1938 में शुरू किया रखने के लिए, इतने बुरे आंकड़े बेरोजगारी के कभी नहीं हुए हमारे इतिहास में। दूसरी बात यह है महंगाई, जो 80% हमारे देश के लोग कह रहे हैं कि उनकी आय, उनकी इनकम बढ़ नहीं गए हैं 10 साल में। तो आप सोचिए, वो लोग महंगाई के छोटे से भी उठ जाएंगे तो उनके पास जितने पैसे हैं उसमें से जो आप 2-3 साल पहले खरीदे थे वो आप नहीं खरीद सके, अभी नहीं खरीद सकेंगे। तो ये सब लोगों के यथार्थ है। और मैं हमारे जवान युवाओं के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि 19 से 24 साल तक जो युवाओं हैं, जो नए काम आरंभ करने वाले हैं, उन लोगों को भी इस बार वोट भी मिले हैं। उनके हालत है कि बेरोजगारी 45% से ज़्यादा है
जी।
और ग्रेजुएट्स जो भी कॉलेज पढ़ाई करके डिग्री लेके बाहर आए, उनके बेरोजगारी 44% है। तो अंत में ये लोगों को कोई कारण नहीं है भाजपा को समर्थन देने की।
परोटा मोदी जी कहते हैं, डॉक्टर साहब, कि आपके पास कोई वजह ही नहीं है। कांग्रेस कहते ऐसी कोई कंपेन सेट ही नहीं कर पाई, एजेंडा बेस्ड कोई कंपेन ही नहीं कर पाई। कहते मैंने इनको उलझा दिया 400 पार के नारे में। वो बीते दिन भी एक सभा में बोल रहे थे, कहते मैंने बड़ी चलाकी से 400 पार का नारा दिया। पूरी कांग्रेस इस बात को डिफेंड करने पर लग गई कि नहीं, 400 पार नहीं होंगे, जबकि कांग्रेस को चाहिए ये था कि हम 400 के पार जाएंगे या हम 300 के पार जाएंगे। अभी भी लेटेस्ट आपकी एक स्टेटमेंट हुई आई, मैंने पीटीआई पे पढ़ी, कि आपने बोला कि 300 पार नहीं जाएंगे। अगर 300 पार नहीं जाएंगे तो दैट मीन्स फिर जीत रहे हैं।
नहीं 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 नहीं, हाँ। मैंने कहा, इसी के साथ मैंने कहा कि 200 पार करना भी अच्छी बात होगी भाजपा। मैंने 400, 300, 200 तीनों कहा।
और प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि मैंने कांग्रेस को उलझा दिया इस बात में?
मेरे ख्याल में अभी प्रधानमंत्री जरा बैक पेडल करने लगे हैं।
हाँ।
ये कहने एक एक्सक्यूज दिखाने के, बहाना दिखाने के लिए कि देखो मैंने ये कर दिया, और मतलब वो ही कह रहा है कि उसको 400 नहीं मिलने वाला है
जी। अच्छा, पंजाब की मैं अगर बात करूं तो पंजाब में आपको माहौल कैसा नजर आ रहा है? पिछले दिनों से आप पंजाब में
2-3 दिन से मैं हूँ, और जहाँ मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, भाजपा को कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ, क्योंकि लोग बिल्कुल देखते हैं कि भाजपा कोई भी वादा पूरी नहीं किया। और इनके जो किसान के खिलाफ जो कुछ किए हैं, सारे किसान कम्युनिटी के खिलाफ हैं। आप अमृतसर जाइए तो वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर ट्रेड से बंद हो गया, बांग्लादेश में उसने कहा कि 48,000 करोड़ की ट्रेड है, और यहाँ हमारे जो 400 करोड़ के थे वो भी बंद कर दिया। तो अंत में कौन है संतुष्ट भाजपा से? युवाओं को काम नहीं है। 40 लाख पंजाबी युवाओं इस देश छोड़ के इस 5 साल में विदेश गए हैं, दूसरे जगह गए हैं काम के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ रोजगार नहीं है
जी।
तो अंत में कौन है संतुष्ट भाजपा के साथ? कुछ नहीं मिलने वाला है।
बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो कि भाजपा के साथ कौन संतुष्ट है, मगर कॉन्ट्रेरी पार्ट कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर भी डॉक्टर साहब संतुष्ट नहीं है। सोनिया जी के साथ ही रहे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भाजपा में चले गए, और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं पटियाला से। आप ही की पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ भाजपा में चले गए, आजकल वो भाजपा के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा और बहुत सारी लंबी लड़ी है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो कांग्रेस को ये आप डेंट मानते हैं पंजाब में कि इसका बड़ा नुकसान होगा इस इलेक्शन में?
देखिए, जब लोग जाते हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी, उनको कोई व्यक्तित्व के अनुसार कोई कारण होंगे। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में जब आप एक पार्टी में रहते हैं, आपका एक सोच होना चाहिए, एक विचारधारा होना चाहिए कि देश को बेहतर करने के लिए किस किस्म के मूल्यों के साथ, किस किस्म के विश्वास के साथ आप राजनीति करना चाहते हैं। तो इतने साल एक पार्टी के अंदर रह के अगर आप उसका डायरेक्ट विरोधी पार्टी के, ऑपोजिट पार्टी के जाएं, उसका मतलब है कि या आपके अभी आपका मतलब उन पार्टी में कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आप जा रहे हैं आपके कोई अवसर के लिए, या आप जितने भी हमारे लिए बोले थे और किए थे उस वक्त आप इनसिंसियर हैं। तो मेरे ख्याल में हर व्यक्ति को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या है हमारे असली सोच, क्या है हमारे विचारधारा। मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई भी एक पार्टी छोड़ना चाहते हैं, कुछ कारण होना चाहिए, लेकिन उस कारण एक आइडियोलॉजी में ग्राउंडेड होना चाहिए। अगर आपका कोई व्यक्ति को पसंद नहीं किया या कोई पार्टी आपको आपके मन में ठीक नहीं हैंडल किया, तो आपको पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन दूसरी जो ऑपोजिट पार्टी है, जो विरुद्ध है आपके सारे सोच के विरुद्ध है, वहाँ जाना तो बड़े अजीब सा नहीं लग रहा आपको?
मोदी कहते हैं एक तरफ विकास की राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ गांधी परिवार की राजनीति हो रही है, पूरी कांग्रेस गांधीज को जिताने में लगी हुई है, और कहते हैं इधर हमारी पार्टी में विकास की बात हो रही है, हम देश को आगे लेके जा रहे हैं।
विकास की सिर्फ बात हो रही है, यही प्रॉब्लम है, विकास तो नहीं हो रही है। बात तो आसान है कहने का, मोदी जी बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन आप देखिए, उसने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल बनाएंगे, एक भी नहीं हुआ अब तक। उसने कहा कि किसान की आय डबल करेंगे, अभी 10% भी बढ़ा नहीं है। कहाँ है जो विकास की बात तो कर सकते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन किसके साथ हुआ है? 80% भारतवासी कहते हैं कि उनकी आय कम हो गई, तो आप बताइए मुझे कि किसका विकास हो गया है? मोदी जी कुछ भी कहें, हम कहेंगे कि ये परिवारवाद का बहाना बहुत बहुत कमज़ोर हो गया है, क्योंकि ये हर पार्टी की यथार्थ है। मोदी जी के खुद अपने पार्टी में किसी ने एक लिस्ट बनाया, करीब 40 MP है
जी,
जो है जिनके उनके बुजुर्गों के कारण उनको टिकट मिला है। तो अब अगर हमारे देश की संस्कृति ऐसे ही है कि लोग अपने माता पिता के काम वो भी करना चाहते हैं, तो हम कौन है बदलने के लिए? ये परिवारवाद बोलने से लोग, जो हर मेरा डॉक्टर है जो आंख देखते हैं, उनका बेटा आंख का डॉक्टर है, दूसरा डॉक्टर है कुछ और देखते हैं, उनका बेटा भी डॉक्टर होने का इसका इरादा है। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश की ऐसी ही रीति है, लोग चाहते हैं कि अपने ही प्रोफेशन में अपने बच्चे जाएं, तो इसलिए कुछ राजनेता भी ऐसे किए हैं, सब नहीं किए हैं लेकिन सब किए हैं।
राहुल गांधी आपको प्राइम मिनिस्टर बनते दिखाई दे रहे हैं?
देखिए, ये तय करना सारे नेताओं के है, मेरा नहीं है। मतलब ये 26 पार्टी की कोएलिशन बनेगी जून 4 के बाद, जब इंडिया गठबंधन आएगी तो सारे पार्टी कुल मिला के इकट्ठे बैठ के किसी को चुनना पड़ेगा। आपने देखा कि 10 साल पहले
जी,
जब हमने 20 साल पहले जब हम मनमोहन सिंह साहब को प्रधानमंत्री बना दिया, कोई नहीं था जो मनमोहन सिंह का नाम सोच के वोट दिया था। लेकिन फिर भी जब सारे नेताओं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA के साथ बैठ के तय किया कि कौन उनको नेतृत्व दे देंगे, सोनिया जी का रिकमेंडेशन था मनमोहन सिंह, सारे स्वीकार कर दिए और इतना अच्छा नेतृत्व दिया देश को
जी।
तो ऐसे भी होगा भविष्य में, मेरे ख्याल में कोई भी आएगा तो सब लोग के समर्थन के साथ आएगा और मेरे ख्याल में अच्छा काम।
इंटरव्यू की शुरुआत में डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि महंगाई और रोजगार 2 सबसे बड़ी समस्याएं देश की मानी जा रही हैं। कांग्रेस के पास इसके लिए एजेंडा क्या है, महंगाई को कंट्रोल करने का, और ख़ास तौर पे जो बेरोजगारी की समस्या है पंजाब में, आपने अभी जिक्र किया कि पंजाब के एक गांव से 25-25 फैमिलीज मूव हो चुकी हैं, गांव खाली हो रहे हैं, तो एजेंडा क्या है आपके पास?
देखिए, हमने तो हमारे न्याय पत्रिका में जो हमारे मैनिफेस्टो है उसमें ये रोजगार के बारे में हमने स्पष्ट लिखा है। पहली बात है कि सरकार के भीतर 30 लाख रोजगार है, जिसके लिए बजट ने कैश भी सारे ऑथराइज किए हैं, पार्लियामेंट ने पास किया ये पोस्ट, लेकिन सरकार भर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ये पैसे को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। हम कहते हैं कि जो बजट में ऑथराइज पोस्ट से पूरे भर्ती करेंगे, पूरे 30 लाख रोजगार को हम भर्ती करेंगे। हमारा दूसरा आइडिया है अप्रेंटिसशिप, जो अंग्रेजी में कहते हैं। हमारा नारा है पहली नौकरी पक्की, क्योंकि आप देखिए कि जगह अगर आप ये युवा है जो आपको काम नहीं मिल रहा है, जो जो युवजन जैसे मैंने पहले बताया था
बोला आपने,
तो उनको हम गारंटी देंगे कि सरकार कोई कंपनी को पैसे देके आपको मौका मिलेगा, और इस मौके में आपको सिर्फ 8,500 मिलेंगे एक महीने में, लेकिन ये ट्रेनिंग के जैसे ले लीजिए आप। अप्रेंटिसशिप मतलब है कि आप कोई नया काम सीख लीजिए काम करते हुए, और कंपनीज को कोई रिस्क नहीं, लेकिन उसका पैसा हम दे रहे हैं। और कंपनीज का ये भी एडवांटेज है, अगर इसका काम अच्छा रहा तो एक साल के बाद आप रेगुलर रेस कीजिए, अगर काम अच्छा नहीं रहा या उनको ही पसंद नहीं आया ये काम, तो दोनों कुछ समझ लिए कुछ सीख लिए
जी।
लेकिन ये पहली नौकरी पक्की होने से आपका एक्सपीरियंस भी है, और ये एक्सपीरियंस के साथ आप सीवी पे लिख सकते हैं कि मैंने एक साल ये काम किया, और उसके साथ मेरे ख्याल में लोगों का रोज़गार का अवसर बेहतर हो जाएगा
जी।
तीसरी बात यह है, हम चाहते हैं कि जॉब क्रिएशन के बंधन से हम सारे अर्थव्यवस्था चलाएं। राहुल जी बार बार कहते हैं कि मोदी जी कुछ लोगों के लिए ही चलाते हैं हमारे अर्थव्यवस्था, कुछ लोगों को बेनिफिट्स देते हैं, उनके कर्ज माफ़ी करते हैं, उनको सब कुछ सारी टैक्स पॉलिसी सारे बेनिफिट देते हैं जो बहुत बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन साधारण लोग के लिए कुछ नहीं करते हैं। मैं भी देखा हूँ कि कई अमीर लोग हैं जो हमारे देश के लिए कुछ टैक्स नहीं देते हैं
जी,
क्योंकि उनका चालाकी है, उनके अकाउंटेंट्स है, सारे कुछ इधर उधर छुपा के सारे लूपहोल्स हमारे टैक्स नियम के अंदर पता करके टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन साधारण लोग, सैलरीड लोग, हमारे जो जिनकी तनख्वाह मिलते हैं और उससे सीधा देते हैं टैक्स, हम लोग सब टैक्स देते हैं, और उसके ऊपर GST हमारे जैसे लोग को देना पड़ता है। अमीर लोग कहीं विदेश से खरीदते हैं या विदेश जाके खरीद के बिना टैक्स के अंदर से लेके आते हैं, ये सब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये सिस्टम ज़रा बदल ले, टैक्सेस को भी हम देख लेते हैं कि फेयर हो जाए। हम न्याय के बारे में बोलते हैं, किसी को हम नहीं चाहते हैं कि इस सरकार के जैसे टैक्स टेररिज्म हो जाए
जी,
कि बिजनेसमैन इतने डरे हुए हैं कि मेरे ख्याल में कुछ हर साल 15-20 हज़ार मिलियनर्स हमारे देश छोड़ के दुबई या सिंगापुर में जाके उनकी कंपनीज वहाँ स्थापित करते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भारत में काम करना नामुमकिन हो गया, ये मोदी सरकार के डिमांड्स एक एक करके लोग आते हैं टैक्स वालों के कि आप पैसे दे दीजिए, यही दे दीजिए, नहीं तो वरना आपके खिलाफ केस लगाएंगे। ये सब कोई भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, वो लोग चले गए। तो ये सब बदलने की ज़रूरत है, और कांग्रेस पार्टी का अनुभव है, आपको मालूम है कि मनमोहन सिंह साहब के 10 साल हमारे देश की अर्थव्यवस्था के सबसे बेहतर 10 साल थे, दोनों इलाके में ग्रोथ भी बहुत अच्छा रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ, GDP ग्रोथ, और उसी वक्त करीब 140 मिलियन यानी कि 14 करोड़ भारतवासियों जो गरीब माना जाता था पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए। तो इस किस्म की विकास हम भी लेंगे।
आपने अमीरों का जिक्र किया, कारोबारियों का जिक्र किया, तो मुझे मोदी जी का एक सीरियस एलिगेशन याद आ गया, कहते हैं कि अंबानी अडानी टेम्पू भर के पैसा भेजते हैं कांग्रेस को।
जैसे राहुल गांधी जी ने जवाब दिया, अगर आपको मालूम है कि ये सब हो रहा है तो आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते हैं। अगर अडानी अंबानी हमें टेम्पो में कैश भेजा है तो उनको पकड़ लीजिए, वहाँ जाके पूछिए कि कहाँ से मिले ये पैसे, ये नोटबंदी के बाद कहाँ मिले आपको ये ब्लैक मनी, और कहाँ कौन से टेम्पो में आपने भेजे बताइए, हमारे पास तो नहीं है। बाकी देख लीजिए, आपने हमारे अकाउंट्स को फ्रीज भी किया है। तो मेरे ख्याल में मोदी जी हमारे जैसे वो भी समझने लगे कि उनकी हार होने वाला है, क्योंकि 1-2 चरण के बाद स्पष्ट हो गया कि जनता उनको वोट नहीं दे रहे हैं, और जो हार्डकोर कट्टर BJP लोग, हिंदुत्व लोग थे, जो जहां उनके स्ट्रॉन्ग हाउस में बहुत ज़्यादा वोट मिलते थे, वहां के वोटिंग टर्नआउट ही भी नीचे आ गया। आंकड़े देख लीजिए, कई इलाके में वोटर्स कम आ गए वोट करने के लिए, क्योंकि उनका कोई ऊर्जा नहीं था BJP के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए। तो मोदी जी ये सब देख के ज़रा सा घबरा गए, और इसलिए ये सब कहने लगा कि अडानी अंबानी के, उनको मालूम है कि अडानी अंबानी के पैसे हमें नहीं मिल रहे, उनको मिल रहा था।
आपको राम मंदिर फैक्टर नज़र आ रहा है देश में?
जी नहीं, क्योंकि जो राम मंदिर की बात, पहली बात ये तो जनवरी है, अब तो हम मई में हैं, लेकिन अप्रैल में चुनाव शुरू हो गए, लेकिन जनवरी और अप्रैल के जो 3 महीने में, उसमें तो उसका असर मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया, क्योंकि लोग वैसे भी बहुत बहुत वक्त से अपेक्षा करते थे, क्योंकि उनको मालूम था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद उनका अदालत तय किया था कि मंदिर बना सकेंगे कि काम शुरू हो गया था, और सब लोग जानते थे कि चुनाव के पहले आएंगे मंदिर। और जब ये लोग अनाउंस किए और जनवरी 22 को जाके प्राण प्रतिष्ठा किया, मेरे ख्याल में जो भी देश में जो एक्साइटमेंट था उसी के साथ ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके बाद सिर्फ वो हिंदुत्व वोटर्स जिनके वोट भाजपा वैसे भी मिलना था
जी,
सिर्फ उस पर असर है। बाकी सब लोग सोचने लगे ठीक है मंदिर तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या है, जनता की भलाई, क्या मेरी परिवार की कुछ भलाई हुई है, मैं देख लेता हूँ कि मेरा बच्चा को अभी भी रोज़गार नहीं है, 10 साल पहले उसने वोट दिया सोचे कि रोज़गार मिलेगा, अभी नहीं मिला, या हमारी आय तो बढ़ती नहीं गई, नोटबंदी में मेरा काम गायब हो गया, मुझे वापस नहीं मिला, कोई काम नहीं मिल रहा है, इस किस्म के सोच है लोग के मन में। और हम भी उनसे कह रहे हैं देखिए अगर आपके परिवार के लिए कुछ अच्छा हुआ है तो ठीक है आप वोट दीजिए, हम मान लेंगे, लेकिन जब आप ही कह रहे हैं कि आपकी स्थिति बेहतर नहीं हुआ है तो इस सरकार को तीसरी मौका कौन क्यों देंगे।
मैं सिर्फ आपके 3 मिनट और लूँगा डॉक्टर साहब। लुधियाना में आपके कांग्रेस प्रेसिडेंट और आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के पोते आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, लुधियाना की के मुकाबले को आप कैसे देखते हैं?
देखिए ऐसा होता है हमारे देश में, मैं जो देखा हूँ कि बहुत बहुत जगह में कुछ लोग संतुष्ट नहीं, किसको टिकट दिया उसके खिलाफ किसी को लड़ाते हैं, या कोई संतुष्ट नहीं।
हमारे पंजाब में डॉक्टर साहब कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, कहते कांग्रेस को ये शराप है कि कांग्रेस के लीडर्स की आपस में बनती नहीं है, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हाईकमान जानबूझकर करवाती है कि आपस में टक्कर बनी रहे।
नहीं, हाईकमान को क्यों टक्कर चाहिए, हाईकमान को ये सिर का दर्द ही आता है जब आपस में कोई टक्कर होता है। नहीं, हाईकमान और कांग्रेस पार्टी चाहते हैं कि सब एक साथ सहमत रहे और सहयोग रहे, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ सही है, सिर्फ पंजाब में नहीं कई प्रदेश में कभी ग्रुपिज्म हो जाता है, लेकिन सिर्फ हमारे पार्टी में नहीं सारे पार्टी।
पंजाब में वैसे कांग्रेस में ये कभी खत्म नहीं हुआ, चाहे कैप्टन साहब थे, चाहे पुराने चीफ मिनिस्टर थे, चाहे चन्नी साहब थे, चाहे अब।
शायद आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन सिर्फ हमारे हालत नहीं है, आप छोटे से पार्टी देखिए उनके में उनमें भी फैक्शंस है, और भाजपा में क्या फैक्शंस नहीं है। वरुण गांधी को क्यों टिकट नहीं दिया गया, क्यों इतने लोग जो संसद में थे उनको हटा दिया, उनको इस बार एक और मौका नहीं दिया। दिल्ली में 7 MP बैठे थे, 6 को उनको टिकट नहीं मिला। तो इसका मतलब मेरे ख्याल में है कि हर पार्टी के अंदर विषय है, लेकिन कांग्रेस की दुर्भाग्य है कि माध्यम लोग सिर्फ कांग्रेस पे ध्यान देते हैं। हमको शायद इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, समस्या हैं, लेकिन हर पार्टी को यह है।
आखिरी सवाल, लिखते कब हैं आप तो इतने बिजी हैं, आपके टूर्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं, पॉलिटिक्स में बिजी हैं, इलेक्शंस में बिजी हैं, 25 किताबें कैसे लिखते हैं आप?
सोता नहीं हूँ ठीक तरह से, यही प्रॉब्लम है, रात को लिखता हूँ, क्योंकि दिन में तो एक राजनेता की जिम्मेदारी उनकी कंस्टिट्यूएंस की होती है, तो कभी भी हम लिखने के लिए बैठे तो कोई फ़ोन आ सकता है, कोई व्यक्ति पहुँच सकता है, तो ऐसे ही वक्त मिलना मुश्किल है। और जैसे आपने कहा, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, बहुत ज़्यादा भाषण देता हूँ, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होते हैं, तो दिन में लिखना काफ़ी नामुमकिन हो गया है, तो इसलिए रात को, क्योंकि नॉर्मली 10-10:30 बजे के बाद कोई तंग नहीं करते आपको, उसके बाद ही मुझे वक्त मिल रहा है लिखने के लिए। और मेरे ख्याल में कभी भी लोग कहते हैं कि एक दिन आप ये फुल टाइम करोगे तो कितने अच्छे किताब लिखे, मैं बोल रहा हूँ देखो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी किताब इतनी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिन मुझे मालूम है कि जनता जनार्दन है कि वो तय करेंगे कि बस अभी साहित्य का क्षेत्र में जाओ, राजनीति छोड़ दो, तो उस दिन मैं छोड़ दूंगा। मैं अब तक तो मैं जनता के विश्वास से के साथ आगे जा रहा हूँ। और मैं
आजकल आप क्या लिख रहे हैं?
आजकल मैं तो एक किताब मतलब पब्लिशर्स को दे चुका है कुछ महीने पहले, और आप हंसेंगे क्योंकि ये वो जो क्लिशे मेरे बारे में, एक अंग्रेजी लफ्ज़ का आदमी है तो ये अंग्रेजी लफ्ज़ों के बारे में, अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स कि कैसे भाषा के एवोल्यूशन हुए, कहाँ से क्या आया, कैसे इस्तेमाल करेंगे, कुछ इस किस्म के छोटे छोटे एसेज। मैं एक कॉलम लिखता था इसके बारे में, उसको ज़रा एडजस्ट करके मैंने एक किताब निकाला है, वो तो सितंबर में आएगा
जी।
उसके बाद देखेंगे चुनाव के परिणाम के बाद कि वक्त मिलेगा या नहीं लिखने के लिए। अगर अच्छी खबर होंगे हमारे लिए तो शायद लिखना ज़रा सा टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा, देखेंगे।
आप खुद कौन सा लिटरेचर पसंद करते हैं, कौन सी किताबें पढ़नी आपको अच्छी लगती हैं?
देखिए किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ जैसे सलमान रुश्दी के
जी,
मुझे बहुत उनका लेख बहुत पसंद करता हूँ, और नॉन फिक्शन जो दुनिया में क्या क्या चल रहा है।
आपने लिखा भी ज़्यादा नॉन फिक्शन भी है?
वो है, क्योंकि नॉवेल्स में शुरू किया मैंने, मेरे पांच पहले किताब में चार नॉवेल्स
जी,
लेकिन बात यह है कि नॉवेल्स लिखने में आपको एक अलग किस्म का दुनिया बनाना है आपके सिर के अंदर,
शायद पॉलिटिक्स में मुश्किल भी है,
वो मुश्किल है,
वो विजन बन ही नहीं पाता उस थॉट में जाने,
जो बनाते हैं वो तोड़ जाता है क्योंकि क्या होता है कि किसी ने आपको बुलाता है। मैं ये तो यूनाइटेड नेशंस में भी ये महसूस हो गया
जी,
क्योंकि मेरा लास्ट नॉवल था रायट
जी,
जो अपना 84 के बारे में और अपना 89 में जो राम जन्मभूमि का एजिटेशन में जो कुछ हुआ था उसके बारे में, ये सारे मैंने लिखा था और ये मैंने पब्लिश किया 2001 में, और 2001 के बाद मैं अब तक एक नॉवल भी पब्लिश नहीं किया। मैं चार पांच शुरू किया लेकिन ये एक एक इंटरप्शन होके लोग आके बुला के इधर आना है उधर जाना है टूर करना है, मैं मुझे पता चला कि ये दूसरा दुनिया में रहना नामुमकिन है। लेकिन आप नॉन फिक्शन लिखोगे
जी,
तो आपको 6-7 हफ्ते भी अगर नहीं छू सकें, वापस आके आप पढ़ लीजिए आप क्या लिख रहे थे, आपका मन ऑटोमेटिकली हाँ यही मैं सोच रहा था, यही मैं कहना वाला था, मैं कह सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैं नॉन फिक्शन लिखूँगा। मैं काफ़ी गर्व से कहता हूँ कि काफ़ी अच्छे किताबें आए हैं मेरे, नेहरू जी का और अम्बेडकर जी की छोटी बायोग्राफी, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा पढ़ा उनके शब्दों, उनके भाषण, उनके लेख, उन दोनों के। नेहरू जी 2003 में मैंने पब्लिश किया, अंबेडकर साहब पिछले साल की किताब है। तो ये सब जब मैं पढ़ने के लिए टाइम इतना कम है तो मैं मेरे लेख के लिए पढ़ना ज़रूरी है, तो इसलिए जो मैं टॉपिक लेता हूँ एक किताब लिखने के लिए उस पर ज़्यादा पढ़ना शुरू कर।
डॉक्टर थरूर जो बनना चाहते थे, बीइंग ए पॉलिटिशियन, बीइंग ए ऑथर, बन गए आप वो, या आप कंप्लीट फील करते हो आपको?
जी शायद नहीं, ये तो सही है कि हमने देश की सेवा के लिए आए थे। मैं तो यूनाइटेड नेशंस में 29 साल काम किए हैं और यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहे, बहुत महत्वपूर्ण विषय से, रेफ्यूजीज़ के बारे में शुरुआत में, उसके बाद पीस कीपिंग, फिर सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में उनके एक मैं राइट हैंड नहीं कहूँगा लेकिन एक राइट फिंगर के रूप में काम किया था उनके साथ। आधा दुनिया में जाके ट्रैवल करता था, प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ बैठ के चर्चा में उनके साथ में था। तो ये सब अनुभव के बाद राजनीति में जब आए, मैंने शायद दूसरा सोच था कि सरकार में काम करूंगा, बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे देश के लिए, लेकिन इसमें से वो सरकारी अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा पहली बार, वो तो अब कई अग्नि परीक्षा महसूस करना पड़ा। और उसके बाद जब मैं बहुत कुछ सीख लिया था राजनीति में कैसे आगे जाना है, फिर विपक्ष में बैठना पड़ा। मैं 3 बार चुनाव जीता हूँ, ये तो अच्छी बात है, और अगर खबर अच्छा है तो 4th बार भी जीतूँगा जून 4 को
जी।
लेकिन उसके अलावा ये जीत के अलावा जो जिम्मेदारियाँ मुझे मिली है, मैं नहीं कहूँगा कि ये सब आइडियल रहे। मैं जब एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन था पार्लियामेंट में, विदेश कार्यों में मुझे शामिल होने का वक्त मिला, मैं मुझे अच्छा लगा, लेकिन भाजपा सरकार ने मुझे वहाँ से हटाए। पूरे मतलब हमारे देश के इतिहास में सब पार्लियामेंट्री कमेटी शुरू होने के बाद हर वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी का अध्यक्ष एक विपक्ष का नेता रहा, वाजपेयी साहब रहा हमारे ज़माने में, गुजराल साहब रहा है, सुषमा स्वराज रहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया, मुझसे छीन के एक भाजपा का सांसद को दे दिया। इस किस्म की चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन हमें क्या क्या मजबूती है इसको रुकने के लिए, क्या पावर है। तो मैं चाहूँगा कि मुझे ज़रा सा और जनता के जीवन में फ़र्क लेने का अवसर मिले, और ये भी जनता के हाथ में है।
बिल्कुल ठीक,
ये मैं उनके छोड़ता हूँ।
आखिरी सवाल हाइपोथेटिकल है, सुना है कि यू नो डाउट कि यू आर द मोस्ट पब्लिक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, तो भाजपा की नज़र भी आप पे है कि डॉक्टर थरूर भी इधर आ जाए?
देखिए पहले बातचीत होगी, लेकिन मैं उनसे समझाया कि देखिए मेरे जो विचारधारा है, जो लोग मुझे जानते हैं, इसमें तो एक चीज़ बिल्कुल उनके साथ नहीं चलता है, वो है मेरी सेक्युलरिज्म, जो कहते हैं मैं भारत का बहुस्वरता बहुत प्रेशस मानता हूँ। मेरे बचपन से मैं सारे मज़हब के लोग मेरे दोस्त रहे, और मैं कभी ये नहीं सोच सकता हूँ जिस किस्म की बात मोदी जी और उनके मंत्री कुछ साल से हमें सुना रहे हैं कि मुस्लिम्स के खिलाफ, कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, ये मुझसे नहीं हो जाएगा। और कुछ लोग मुझे कहा कि देखिए अरे क्या बात है यार, क्या आप कोई भी पार्टी में कोई भी 100% उनके साथ सहमत नहीं होंगे? तो मैंने कहा लेकिन इस विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे जब सहमत नहीं हूँ तो बीजेपी के साथ नहीं काम कर सकता हूँ। तो इस प्रश्न मुझे उठाने के सवाल भी मैं देख रहा हूँ कि हर रोज 10 साल से कोई ना कोई लिखता है, कहता है ये भाजपा पे जाने वाला, क्यों? क्योंकि मेरा मन हर चीज पे मेरे मेरे आज़ादी का सोच है, मेरी ही सोच है
जी।
लेकिन मैं जो 40 साल से लिख रहा हूँ ये तो इतना जल्दी भूल नहीं सकता हूँ मैं और मेरे जो फॉलो करने के लोग हैं, तो वो लोग भी नहीं समझेंगे कैसे मैं मेरा विचारधारा छोड़ के इस किस्म के पार्टी के साथ जाऊँ, तो कभी नहीं हो सकता।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर थरूर समय देने के लिए आपका, थैंक यू।
नमस्कार जी, धन्यवाद।